لوگو جان لو کہ یہ لوگ بنی امیہ خدا کی اطاعت کو چھوڑ چکے ہیں اور شیطان کی پیروی کرنے لگے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں اور الہی حدود کو ترک کر چکے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص غنائم کے مالک بن بیٹھے ہیں اور حلال و حرام اور اوامر و نواہی الہی کو تبدیل کر چکے ہیں۔ میں ان لوگوں سے جو میرے جد کے دین کو تبدیل کیے بیٹھے ہیں رہبری کے لیے زیادہ حقدار ہوں، اور اس کے علاوہ وہ خطوط اور دعوت نامے جو تم نے میرے پاس بھیجے تھے اور قاصد جو میرے پاس تمہارا پیغام لے کر آئے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ ہمارے جانب آئیے، یہ وہ وعدہ ہے جو تم نے ہم سے کیا تھا کہ مجھے دشمن کے سامنے تنہا نہیں چھوڑو گے اور میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ اب اگر تم اپنے عہد پر وفادار رہتے ہو، سعادت اور خوشیاں تمہارے حصے میں ہوں گی، چونکہ میں حسین رسول خدا کا فرزند اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میرا وجود تمام مسلمانوں کے وجود سے وابستہ ہے، اور تمہارے بچے اور گھر والے میرے بچوں اور گھر والوں کے مانند ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام۔
لیجیے، اپنا منہ میٹھا کیجیے، لیجیے۔
شکریہ، بہت بہت شکریہ۔
لیجیے میڈم، آپ بھی لیجیے۔
شکریہ،
بہت بہت شکریہ۔ لیجیے
ڈاکٹر لبافی،
اس کا نام کیا ہے؟
ڈاکٹر لبافی، آئی سی یو
امیر عباس مرتضوی۔
میڈم لیجیے، اپنا منہ میٹھا کر لیجیے، تکلف نہ کیجیے۔
نہیں کھاؤں گی۔ وہ بچہ کہاں ہے بتائیے پلیز۔
الحمد للہ وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ بےچارا تو ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ حاجی صاحب کی دعا کام آئی۔ آپ کون ہیں؟ مطلب حاجی صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟
میں بہن ان کی۔
مرضیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی تعریف حاجی صاحب اکثر کیا کرتے ہیں۔ لیجیے۔
ارے ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، بس بتاؤ بچہ کما میں
تھا؟ پہلے تھا لیکن اب ماشاء اللہ ہوش آ چکا ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ مٹھائی اسی کی خوشی میں ہے۔ لیجیے اپنا منہ میٹھا کیجیے۔ لیجیے آپ بھی اپنا منہ میٹھا کیجیے۔
اللہ کا شکر۔ اب اس وقت بچہ کہاں ہے؟
آئی سی یو میں ہے۔
ڈاکٹر حسینی، آئی سی یو وارڈ پلیز۔ ڈاکٹر حسینی، آئی سی یو وارڈ پلیز۔
خدا کا شکر کہ سب پہ خیر گزرا، لیکن حاجی یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ باتیں دوسروں سے مرضیاں سنیں۔
حاجی صاحب لیجیے اپنا منہ میٹھا کیجیے۔ حاجی صاحب کیا ہوا؟ حاجی صاحب
طبیعت کیسی ہے اس کی؟
دیکھیں آپ کے بچے کو سر و گردن میں تھروما ہو گیا اور کمر میں بھی شدید چوٹ کی بنا پر ریڑھ کی ہڈی پر اثر پڑا ہے، اور یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے اور اسے ہماری زبان میں پیراپیلوجی کہتے ہیں۔
یہ پیراپیلوجی کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟
اس سچویشن کو کہتے ہیں جس کے تحت مریض اپنا نچلا حصہ ہلانے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ حالت کبھی تو ٹیمپرری ہوتی ہے اور کبھی عمر بھر، لیکن ہم ابھی مایوس نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے پیروں کو ہلا سکے گا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ دماغی صدمے سے باہر آ چکا ہے۔
ٹھیک ہو جائے گا نا؟
ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن
کیا ڈاکٹر صاحب آپ اس کا آپریشن نہیں کر سکتے؟
ابھی 24 آورز ویٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد دوبارہ ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کریں گے، پھر ڈیسیجن لیں گے۔
بابا جان،
پتا نہیں اللہ کی مرضی کیا ہے۔
بابا جان اہم بات تو یہ ہے کہ بچہ ابھی زندہ ہے،
ہم اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کو کہیں باہر بھیج دیں گے،
وہاں میڈیکل فیسلٹیز بہت بہتر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح ہم بیٹھے رہے یوں ہی انتظار کرتے رہے۔ مجھے یقین ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے۔
فی الحال تم اپنی ماں کے پاس رہو، میں دیکھتا ہوں اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے۔
جی ٹھیک ہے۔
حسین بیٹا، میری سانس اس بچے کی سانس سے اٹکی ہوئی ہے، تم تو جانتے ہی ہو۔ اس بچے کی صحت و سلامتی کے ساتھ واپسی کی کوئی بھی قیمت ہو میں ادا کرنے کو تیار ہوں، تم تو جانتے ہی ہو نا۔
بابا جان کہیں نرگس کی باتوں کا برا مت مانیے گا، عورت ہے، ماں ہے، دل ٹوٹا ہے اس کا، کبھی کبھی تو بالکل قابو سے باہر ہو جاتی ہے۔
کوئی غلط بات بھی نہیں کی ہے، اس کا دل ٹوٹا ہے۔ ٹھیک کہتی ہے وہ،
آپ بڑے ہیں اسے معاف کر دیجیے۔
غلطی تو میں نے کی ہے بیٹا، معاف تم دونوں کو کرنا چاہیے مجھے، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔
ڈاکٹر سعیدی ایمرجنسی وارڈ، ڈاکٹر سعیدی ایمرجنسی وارڈ پلیز۔
امیر عباس کے خرچے کے لیے تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسے بیرون ملک بھیجنا ہے تو بھیجو، خدا پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ لیکن ہم لوگ تو صرف دعا اور نظر و نیاز ہی کر سکتے ہیں نا۔ مجھے بتاؤ، کوئی مولا اپنے غلام کو اتنے سال نوکری کے بعد خالی ہاتھ واپس بھیج دے گا کیا؟ کہاں جائے آخر؟
बाबा ये तो आपकी पूरी जिंदगी है।
मेरी पूरी जिंदगी तो वहां उस बेड पर है कि हिल भी नहीं सकता है।
भाई एक मिनट रुकिए। मैं यहां सिर्फ हाल चाल पूछने आई थी। दुआ करूंगी कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द शिफा हासिल हो। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ दूर तक मुझे भी छोड़ दीजिए।
फूफी जन आप जहाँ कहें मैं आपको छोड़ देता हूँ।
नहीं बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के पास रुको। मुर्तुजा की गाड़ी पर बैठना तो बहाना है, मुझे कुछ बात करनी है। मुर्तुजा यहीं पे रोक लो।
अभी पहुंचे नहीं हैं।
एक काम है, रोक लो ना।
किस लिए?
तुम भी उतर जाओ। इस पार्क में आने के लिए कब से बेचैन हूं। बचपन याद आ गया। तुम्हें याद है यहाँ हम कितना खेलते थे, कितना दौड़ते थे, सिर्फ मस्ती करते थे। बाबा हमेशा कहते थे आराम से खेलो, कहीं कुछ हो ना जाए।
हाँ लेकिन ये बातों का वक्त नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ।
तुम पर रश्क आता है मुर्तुजा।
रश्क? कल जो हम पर रश्क करते थे आज मुझको काश देख लेते। इतने अरसे के बाद हमारा रोना देख रही हो, इस पर रश कैसा?
यही जो परवाने की तरह सब के सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, वही लायक शुक्र है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, उनकी कदर करो मुर्तुजा। जैनब की, हुसैन की, अपनी बीवी की, और ये दोनों बेवकूफ जिनको तुमने पाला पोसा है, खलील और माहमुनीर।
माहमीना बेवकूफ भी नहीं है, सैकड़ों आकल इंसानों से बेहतर हैं। उनका दिल बिल्कुल पाक और साफ है, जर्रा बराबर भी उन दोनों के दिल में कोई खोट नहीं है। मैंने उसकी शादी की थी, आलिया उसका रिश्ता लेकर गई थी, मेरे बच्चों जैसा है, हुसैन की तरह उसे भी मानता हूं। इतने खराब मिजाज के बाद उनका एहसान है जो मुझे बर्दाश्त करते हैं और मुझे कहते भी कुछ नहीं।
खुदा का शुक्र तुम्हें अपने खराब मिजाज होने का एहसास तो हुआ।
मैं अंधा बहरा नहीं हूं, अपने मिजाज का भी इल्म है और दूसरों के खराब मिजाज का भी।
हाँ सब जानते हो, लेकिन काश कुछ न जानते। काश उस मासूम बच्चे की जगह तुम्हारे सर पर चोट आती और सब कुछ भूल जाते। मुर्तुजा अब हम बूढ़े हो गए, हमारा कोई ठिकाना नहीं। कल नहीं तो परसों हमारी आंख हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बुरी बात है कि इंसान दूसरों से नाराज रहे और उसी हालत में कब्र में उतारा जाए। मुझे वो बचपन वाला मुर्तुजा चाहिए। आप गलत या सही मैं नहीं जानती।
मुश्किल तो यही है कि गलत सही को नहीं जानती। सही हक है और गलत बातिल। कैसे मुमकिन है इंसान गलत और सही से ही लातालुक हो जाए?
ये तो है, लेकिन ये कैसे पता कि जिस तरफ तुम हो वही हक है और दूसरा बातिल पे है?
अब 20 साल के बाद असली लड़ाई की तरफ आ ही गई। 20 साल से हर कोई अपने को हक समझता है और दूसरे को बातिल। वो जमाना भी जल्द ही आएगा कि कसीमे जन्नत और दोजख बताएगा हक पर कौन है और बातिल पर कौन।
इसमें क्या शक, मौत भी हक है, कयामत भी हक है, जन्नत और दोजख तकसीम करने वाला भी हक है। जब जिंदगी अली अली कहकर, हुसैन हुसैन कहकर गुजारी हो तो جب اتنی زندگی ماتم اور آزاداری میں کٹ جائے، کیا قیامت کے دن مولا علی کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ ہم معاف کر سکتے تھے اور معاف نہیں کیا، گناہوں کو کاندھوں پر لے کر یہاں تک آئے اور پل صراط پر زمین پر رکھا؟
کبھی کبھی انسان کروڑوں کروڑ روپے اپنے عزیزوں کی جان بچانے کے لیے آگ میں ڈال دیتا ہے اور اس کام سے خوش رہتا ہے، اور کبھی پھوٹی کوڑی کے لیے ایک دوسرے کا گریبان تک پکڑ لیتا ہے اور پولیس تھانے اور کبھی قتل پر تیار ہو جاتا ہے۔ حق اور ناحق مقدار پر نہیں بلکہ نیت پر ہے۔
اور کبھی انسان بھول جاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ کربلا میں تمام عظمتوں کے باوجود لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پائے تھے، کہاں کیسے پہچان سکیں گے جب تمہارے بقول دو کوڑی پیسوں کی بات ہو؟
افسوس کہ راستہ کم تھا اور تمہاری نصیحت پوری نہیں ہو پائی۔
اوپر چلو، ایک کپ چائے پی لینا، اس وقت تک شاید میری نصیحتیں کسی نتیجے تک پہنچ جائے۔
ابھی وقت بہت ہے۔
مجھے نہیں لگتا۔
دعا کرو مرضیہ، دعا کرو خدا اس مرحلے میں ہمیں کامیاب کرے۔
امام بارگاہ کا کیا ہوا؟ خرید لیا؟ دکان بیچ دی؟
تمہارا حصہ ضرور دوں گا۔
میں نے حصے کی بات کی؟
میرا تو اپنے اونٹ پر اختیار ہے، امام بارگاہ کا مالک کوئی اور ہے۔ پوری کوشش کی، خدا بہتر جانتا ہے، میں نے پوری کوشش کی، شاید قسمت میں نہیں۔
ایک سیب زمین پر گرتا ہے تو 50 بار کروٹے لیتا ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، میں غیر نہیں تمہاری بہن ہوں، سگی بہن، چاہے امیر عباس کے لیے اور چاہے امام بارگاہ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ جوانی میں تو ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کیا، اس وقت تو ایک دوسرے کے لیے کر سکتے۔
خدا تمہیں اچھا رکھے۔
خدا حافظ۔
خدا حافظ۔
اپنا خیال رکھنا۔
جیب خالی ہے بیٹا؟
کسی بچے کا پیسہ ہضم نہیں ہوتا، گلے میں اٹکے گا ضرور۔
واپس آ کر قرض چکا دوں گا۔
آپ نے کہا اور میں نے مان لیا۔
السلام علیکم حسین صاحب۔
وعلیکم السلام۔ اندر آ جاؤ۔
زحمت نہیں دوں گا، یہیں پر آپ کو ایک زحمت دینا چاہ رہا تھا، بس دو منٹ کا وقت لینا چاہتا ہوں۔ اگر اجازت دیں تو دروازہ بند کر کے آپ سے پرائیویٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
سب خیریت تو ہے؟
جی سب خیریت ہے۔ حسین صاحب، ٹھیک ہے ہم بھائی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل بھائی کی طرح بلکہ بھائی سے بھی زیادہ چاہتا ہوں۔ امیر عباس میرے مالک کا لڑکا ہے اور میرے بڑے مالک کا پوتا ہے، ایک بھتیجے سے کہیں زیادہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ گلی کوچوں میں لوگ مجھے صرف ایک نوکر سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی، ایک معمولی شخص، لیکن اس گھر کے لوگوں نے کبھی بھی میرے ساتھ نوکر جیسا برتاؤ نہیں کیا۔
تم میرے دوست ہو، میرے بھائی، میرے عزیز و خلیل، ये कैसी बातें कर रहे हो?
मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ है, मेरे पास जो कुछ है सब हाजी साहब की बदौलत है। अगर यह हुआ कि अमीर अब्बास ना रहे या उसको कुछ भी हुआ तो मैं भी दुनिया में नहीं रहना चाहता। मेरे पास जो भी है सब कुछ अमीर अब्बास के मुस्कुराहट के सदके है, आपके सदके, हाजी साहब के सदके है। ये आप रख लीजिए, ये उसकी दवाओं के लिए है। कैसे बताऊं, बस समझ लीजिए कि एक जेब से दूसरी जेब में जा रहा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है सब हाजी साहब का ही दिया हुआ है।
नहीं खलील, मैं तुमसे ये सब नहीं ले सकता। शुक्रिया
हुसैन साहब, ये आप ना सोचिए कि माँ अमीना को इस चीज़ की खबर नहीं है, वो खुद ही लाना चाह रही थी नरगिस साहबा की खिदमत में, कहा कि बुरी बात है। बहरहाल आप तो जानते ही हैं औरतों के काम का कोई भरोसा नहीं होता, हम मर्द एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। ये आपकी खिदमत में।
बाबा ने कहा था हमने ओहद की पहाड़ियों पर टेक दे रखा है, नहीं समझ पाया था उनकी बात, अब समझ में आया कि वो दरहकीकत तुम्हारी बात कर रहे थे खली। अमीर अब्बास की कसम, बाबा जान की कसम, अगर एक बार तुम्हारे मुंह से मैं सुना कि तुमने अपने आप को नौकर कहा तो नाराज हो जाऊंगा। तुम तो मेरे भाई जैसे हो।
हुसैन साहब, हम दोनों भाई जैसे नहीं बल्कि भाई हैं, भाई हैं हुसैन साहब, समझ गए ना आप, समझ गए ना हुसैन साहब।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे भाई को तो पता चल गया होगा कि कैसे फंस गया हूँ।
नहीं हाजी साहब, भाई की तरफ से नहीं आया हूँ, काफी देर से बाहर आपका इंतजार कर रहा था।
क्या काम है?
पहली बात तो आपके पोते की खैरियत लेना चाह रहा था,
दूसरी बात,
और दूसरी बात ये कि भाई इमाम बारगाह का फैसला करना चाह रहे हैं।
शायद खरीदना मेरी किस्मत में नहीं।
हाजी इमाम बारगाह का तोड़ना वाकई गलत है, वो मेरे मरहूम बाबा की याद दिलाता है।
ये बातें अपने भाई से क्यों नहीं कहते?
वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो कहते हैं तुम अभी बच्चा हो, छोटे हो, लेकिन हाजी मैं वही छोटा बच्चा रात भर सो नहीं सका। मुझे यकीन है मेरे मरहूम बाप की रूह इससे खुश नहीं है, अगर उन्हें मेरे आने का पता चला तो हंगामा खड़ा हो सकता है।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता।
अगर आप नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकता।
इस वक्त कहाँ है?
इंशाल्लाह फायदा होगा। इमाम बारगाह की जमीन मामूली नहीं है, इसमें आपके लिए बहुत बरकत आएगी। यहां पर कई नस्लों ने आजादारी और मातमदारी की है, यहां पर इमाम हुसैन के नाम पर नजर नियाज किया गया है, अब इसके बाद आप ही मालिक हैं इसके। लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुहर्रम और सफर की रातों में आजादारी होती रहे यहां पर। शायद आपके लिए भी मुनासिब ना हो कि इमाम बारगाह की जगह बदलें, इसका खर्चा मैं खुद दूंगा, दो रोज दिन में और पांच दिन रात में। बन जाने के बाद पहली रात हाज हुसैन अली के नाम से खाना खिलाएंगे, मोहल्ले वाले भी खुद ही साथ देंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको बताएंगे वो लोग।
मैं भी कोई दीनों मजहब से दूर नहीं हूं, कई जगहों पर खाना खिलवाता हूं।
क्या बात मुरवती साहब, मुझे भी दीन से दूर लोगों से नफरत है बहुत। इंसान कोई भी हो दूसरों के अकीदे की बेहतरामी नहीं कर सकते, गैर मुस्लिम हो ईसाई हो सब एहतराम करते हैं, लेकिन आज के नौजवानों को देखिए।
वाकई ऐसे नौजवान तबके से अल्लाह की पनाह, हर मुसीबत इन्हीं की बिना पर नाजिल होती है।
वाह जी साहब खुशामदीद, माफ कीजिएगा, पुराने ताल्लुकात की बिना पर मैंने इंतजार किया, बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन शायद किस्मत में नहीं था। खुदा उस बच्चे को शफा दे, बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन मैं कह चुका था कि कितना परेशान हूँ, पैसे की बहुत ज़रूरत है। बहरहाल मुरौदी साहब के साथ सौदा हो गया है। आइए बैठिए हाजी साहब, बैठिए।
तुम बोलो।
हाजी साहब मोहल्ले के बुजुर्ग हैं। अब्बू से बहुत पुरानी दोस्ती थी हाजी साहब की, दोनों भाई की तरह थे। मरहूम अब्बू भी बहुत इज्जत करते थे इनकी। इमाम बारगाह तो अब्बू के नाम था, लेकिन सारी जिम्मेदारी हाजी मुर्तजा की थी। हाँ मुर्तजा साहब, अगर आपने शॉपिंग प्लाजा में इमाम बारगाह रखने की कोशिश की तो हाजी मुर्तजा को मत भूलिएगा।
मुझे किसी अंजुमन की ख्वाहिश नहीं है। तेहरान के ज्यादातर इमाम बारगाह के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इमाम हुसैन के खादिम को सब जानते हैं। आज़ादारी का उस वक्त मजा है कि जब अंजुमन के लोग आपको ना पहचानते हों और फालतू की इज्जत ना करें। डरो मत, आशूर के दिन तेहरान में कोई शख्स बगैर इमाम बारगाह के नहीं रहेगा। और तुम भी अपने प्लाजे को काले परचम लगाकर खराब क्यों करना चाहते हो? फैशन के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हुसैनिया, इमाम बारगाह और आज़ादारी से पहले इंसान को मालूम होना चाहिए कि हलाल क्या है और हराम क्या। इमाम हुसैन को भी इसी हलाल और हराम की बिना पर ही शहीद किया गया था।
इसका नाम शब्देज है, मैंने खुद उसे पाला है।
जी हाँ, आपका काम ठीक है, लेकिन बास चीजें कागज पर नहीं लिखी जाती। अगर लिखी भी जाए तो बास बेगैरत लोग इसे महफूज नहीं रहने देते।
ये हमारे और हाजी साहब के बीच की बात है। हाजी साहब की उम्र ज्यादा हो गई है, इसलिए बातें भूलने।
जी हाँ, ये बात भी रोज़े रोशन की तरह वाजे है कि हाजी हुसैन अली ने यह जमीन इमाम बारगाह के लिए वक्फ कर रखी है और इस पर कब्जा जायज नहीं है, हराम है।
फिर वही बातें। हाजी साहब, मैं इन लोगों को असली कागजात दिखा चुका हूं।
कोई सनद ऐसी नहीं है कि हराम को हलाल बना दे।
यह हाजी साहब जो कुछ ज्यादा ही मोमिन बन रहे हैं, इनको देख लें जो हलाल और हराम की बातें कर रहे हैं। खुद ही इमाम बारगाह के परचम को जिसे अब्बू 60 साल पहले करबला से लाए थे अपने घर में उठा ले गए। हाजी, दूसरों के गरेबान में झांकने से पहले अपने आप को सुधारिए। इमाम बारगाह के परचम को अपने घर में छुपाए हुए हैं। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आप इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं मुझ पर।
मेरी आंखों में आंख डालो। मैंने कहा मुझे देखो, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? देख लेना कि कैसे अल्लाह इसका बदला लेगा।
इस वक्त तो खुदा आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अलबत्ता माफ कीजिएगा हाजी साहब, वो मासूम बच्चा भी आपके गुनाहों की सजा भुगत रहा है।
आपके शाया निशान नहीं है कि आपका केस कोर्ट के हवाले करूं। आप खुद सुलह सफाई करके हंसी खुशी इस मामले को खत्म कर दें।
किसी को शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है तो कोई बात नहीं, वो मेरे बुजुर्ग हैं। शायद मेरे मरहूम अब्बू मुझे कभी थप्पड़ मारना चाहते थे, जो उनके दोस्त के हाथों मेरी किस्मत में था। मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं होता कौन हूं कि हाजी साहब के सामने हक की बात करूं? कैसी रजामंदी, मुझे कोई शिकायत ही नहीं। अगर वो 10 बार भी मुझे थप्पड़ मारना चाहे तब भी मैं राजी हूं। हाजी साहब, मुझे आज भी छोटे बड़े का ख्याल है।
तो फिर मामला क्लियर है?
मामला पहले से ही क्लियर था। अगर कानून और उर्फ के लिहाज से भी मैं हकदार रहूं तो भी मैं अपने हक से दरगुजर करता हूं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इमाम हुसैन और इमाम बारगाह के हक को क्या करूं? एक ऐसे परचम की बात है जो बिल्कुल अलग सा। इसकी मादी कीमत की बात नहीं है, बल्कि इसकी मानवी अहमियत बहुत ज़्यादा है। मेरे मौला इमाम हुसैन का परचम आज़ादारी के लिए है। मेरे मरहूम अब्बू इसको करबला से लाए थे, और ये आज की बात नहीं है, बहुत साल पहले की बात है। उस वक्त इसकी खास अहमियत थी। लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि محلے کا ایک قابل اعتماد آدمی اسے اپنے گھر میں کیوں چھپائے ہوئے ہیں؟
ذلیل اور گھٹیا انسان،
لیکن
یہی ہے، یہ صندوق ہمارا ہے انسپکٹر
صاحب۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کا، لیکن تھانے میں اس کی رپورٹ درج کرنی پڑے گی۔
چلیے
چلیں،
چلتے ہیں۔
چھوٹا اور بے غیرت انسان،
ایک شیطان شہد کی مکھی ہمارے گھر میں ہے گسائی، کاش یہاں سے چلی جائے، صحراؤں میں بھٹک جائے، کہیں ہمیں ڈنگ نہ مار دے وہ، کہیں سب کچھ نہ جل جائے۔ وہ کھڑکی پر ہے بیٹھی، ہم سب پر وہ ہے ہستی۔
امی، لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟
نہیں بیٹا، میں رو نہیں رہی ہوں، یہ تو بس خوشی کے آنسو ہیں۔ ایک اور، میرا بیٹا پیارا پیارا، پیاری پیاری آنکھوں والا، سب کی بات سنتا ہے وہ، سب کی بات مانتا ہے وہ۔
تم اس طرح مجھے دیکھ رہی ہو جیسے میں مقتل جا رہا ہوں؟ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں امیر عباس کو دیکھنے۔
نرگس اس کے پاس ہے۔
ایک تیر سے دو نشانہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ امیر عباس اور ہاشم دونوں سے ملاقات کر لوں گا، بس تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔
پھر سے ایک بار اور، کل ڈسچارج کر دوں گا نوجوان۔
ہمت نہیں پڑی کہنے کی کہ مر رہا ہوں، کہہ دیا کہ جوان۔
جس کا دل جوان ہو وہ جوان ہے، اور کس نے کہا تم سے کہ تم مر رہے ہو؟ تمہارے دوست تمہیں باہر کی ہوا دینے کے لیے کب سے انتظار کر رہے ہیں، خدا ہی جانے۔ مجھے پولیس کو فون کر کے کہنا پڑے گا کہ تحال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے۔ حاجی صاحب، کوئی بینک وینک لوٹنا ہے کیا؟
ابھی وہ بینک کے پیسے جو 30 سال پہلے لوٹے تھے ختم نہیں ہوئے ہیں، جو نئے بینک لوٹنے کی ضرورت پڑے۔
بہرحال میں ہاشم کو صحیح و سلامت تمہارے حوالے کر رہا ہوں حاجی، کل آ کر یہ مت کہنا کہ پرانا مال تمہارے حوالے کیا تھا۔
ہم میں سب سے اچھی صحت ہاشم کی تھی، جو اس وقت مریل جیسا ہو چکا ہے۔ کیا ہوتا ہے
تو اب یہ بات ہے، اب سب اچھے اور مست اور ملنگ ہیں، اور میں ہی ایک لاغر بیمار اور کباڑی والا ہو گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، ذرا ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ لکھیے، بڑے جو کود پھاند رہے ہیں نا، اپنی رپورٹ دیکھ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور ایک دم سدھر جائیں گے۔
ٹھیک ہے، لکھ دوں گا۔
جی ہاں، شمر بن ذل جوشن کی بات کون کاٹے گا؟
ڈاکٹر صاحب، یہ قید سے رہائی کب ملے گی؟
کاغذ قلم ہے کیا؟
ہاں ہے جی، ہے تو۔
تو پھر لکھو۔
پہلے یہ چشمہ تو لگانے دو۔ بولو آجی۔
अबुल कासिम,
अबुल कासिम,
यहिया,
यहिया,
रहीम,
रहीम, हाजी कोई भी छूटने ना पाए,
हबीब,
हबीब,
ये तो मैं भी जानती हूँ कि हाजी आपके बाप की तरह हैं।
हाजी मेरे बाप की तरह हैं? हाजी मेरे बाप ही हैं। ठीक है कि लोग समझते हैं कि मैं एक छोटा और मामूली इंसान हूँ और बेवकूफ़ भी हूँ, लेकिन खुदा की कसम ऐसा नहीं है।
ये कैसे बात कर रहे हैं आप? किसने आपके बारे में ऐसा कहा?
कहते हैं लोग, मार्केट में कहते हैं लोग, मैंने खुद सुना है ये बात, लेकिन मेरे लिए ये सब अहम नहीं है। अहम तो बस तुम हो, हाजी साहब हैं, आलिया साहबा हैं, जैनब, नरगिस साहबा हैं, अमीर अब्बास, यही अपने हुसैन साहब। हुसैन मेरे भाई के जैसा नहीं है, वो तो खुद मेरा भाई है। बेचारा बहुत ही नाजुक मिजाज और बहुत साबिर है, किसी से भी अपने गम का इजहार नहीं करता।
नजर की है कि अगर बच्चे को शिफा मिल जाए तो मुहर्रम में एक दिन इमाम बारगाह में खाना खिलाऊंगी।
ऐसा मत करो, मामूली इंसान का काम मत करो। चावल ठीक से और अच्छा ना उतरा तो हम सब की बेइज्जती हो जाएगी, मत करो ऐसा।
मैं खुद नहीं पकाऊंगी भाई, मतलब इसका चावल, गोश्त, तेल वगैरह मैं दूंगी।
कहाँ से?
मैं और आप और कौन, मेरी तो कोई आमदनी नहीं है, आप ही से लेंगे।
ओफो, ऐसा तुमने कहा कि मैंने नदर की है, मुझे लगा कि शायद करोड़ों कहीं घर में छुपा के रखा है या इतना पैसा बचा के रखा है तुमने।
मैं और तुम मत करें, हम कहिए, मैं आपकी जिंदगी के साथी हूँ।
अरे आप तो मेरे सर की ताज है माहमीना साहबा, अब ठीक है, खुश हो?
अच्छा ये बताइए, मैंने घर में आपको चावल कब खराब बना के दिया है?
आलिया साहब के घर पे तो नहीं, लेकिन अपने घर में चावल अच्छा बनता है लेकिन सालन खराब। नहीं मतलब जैसा तुम बनाती हो मुझे वैसा ही अच्छा लगता है, समझ गई ना? अब समझ गई ना, तुम समझ रही हो ना? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ये मामूली सालन कैसे पसंद आ जाता है। भाई असली सालन तो वो है जो तुम बनाती हो और फिर बर्बाद कर देती हो, समझ गई ना? कुछ समझ में आया तुम्हें?
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देख रही हूँ मजाक मजाक हम कैसे अपनी बातें कह देते हैं।
मजाक का वक्त थोड़ी है भाई, बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी बात ये कि हमारे गांव में खाना पकाने को ही बर्बाद करना कहते हैं।
एक बात कहती हूँ, नाराज मत होइएगा, इसी तरह की बातें हैं जो आप दूसरों के सामने करते हैं और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं।
चलो बस भी करो, कहीं हमारी इन फालतू बातों की वजह से हमारी आपस में लड़ाई ना हो जाए। चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं, देखें उस मासूम बच्चे की तबीयत कैसी है। उठो, मेरा मुंह क्या देख रही हो?
ठीक है,
मामूली इंसान, कूड़े की जगह खुद कूड़ेदान है, समझी? कुछ समझ में आया?
जी।
चलो भाई अब चलो, जल्दी चलो।
अमीर अब्बास को सारे कागजात लाई हो ना?
हाँ, आईडी कार्ड और पासपोर्ट लाई हूँ, और तो कुछ नहीं था ना?
फोटो 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 भी लाई हो?
हाँ लाई हूँ, वो तुम्हारे ही तो पास है।
हाँ हाँ मेरे पास।
समझ में नहीं आ रहा है ये फूल को क्यों बर्बाद कर रहे हो?
वो इसलिए कि यहाँ से उठा लेंगे और अपने मुर्दे की कब्र पर रख देंगे।
तो रहने दो, इसमें बुरा क्या है?
हाँ ठीक कहा तुमने, हमारे इस फूल को दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर लेंगे, कब्रों पर रख देंगे।
जी मुमकिन है कोई ऐसा भी शख्स हो जो एक फूल खरीदने के भी काबिल ना हो, यहाँ से कर्ज के तौर पर उठा लेगा ताकि अपने मुर्दे के सामने शर्मिंदा ना हो।
हम लोगों को गलती का एहसास है, खुदा तुम्हारी मगफरत करे हिशमत।
करवट करवट जन्नत नसीब हो हिशमत, अब हमारे साथ कहां से मिलेगा?
माफ करना भाई, बहुत माजरत के साथ, तुम्हें खोली, हुरमुला या सनान इब्ने अनस बनना पड़ेगा, ठीक है ना?
तो घुमा को क्यों बोल लो, सीधा सीधा बोल दो शेम्र।
औलिया और अहम किरदार कहां से ले आए, कम हैं लोग?
कम नहीं है, बहुत कम है। लेकिन हम दोनों को मिलके ऐसे लोगों को तलाश करना पड़ेगा।
अच्छा
जी हाँ,
तो फिर ढूंढो।
ठीक है, सुबह सवेरे कब्र में से नहीं।
हिशमत, खुदा तुम्हारी मगफिरत करे। दुआ करना, अगर उस दुनिया में तुम्हारी कोई पहचान भी हो जाए तो तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। हमारी सिफारिश करना बहुत परेशानी है।
मुझे नहीं लगता, चूंकि इस दुनिया में तुम्हारे साथ घूमे फिरे हैं तो उस दुनिया में भी उन्हें कोई कबूल करता होगा।
ऐसी बात है?
जी हाँ, ऐसी ही बात है।
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چلو اب چلیں، چلو اب باقی کو بھی جلدی ڈھونڈتے ہیں، نہیں تو وہ بھی حشمت کے پاس سونے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جلدی کرو جلدی۔
اگر تمہارا مقصد میں ہوں تو ٹھیک کہا۔
اوف اوف، بار بار دہراؤ گے، مصیبت ہے۔ اب منہ بند ہی رکھو تم۔
منہ بند کر لیتا ہوں، لیکن میں پہلے ہی بتا دوں، کسی کو بھی اپنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا۔ زیادہ پریشان مت ہو، کوئی بات نہیں، اس دنیا میں بھی ایسی شبی خانی کریں گے، وہاں والے بھی جھوم اٹھیں گے۔
Cold.